नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखने के लिए फिलीपींस के प्रयासों का भारत समर्थन करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में विकास का केंद्र बनेगा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया और भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एडन नई जोड़ी मायामी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखने के फिलीपींस के प्रयासों का भारत समर्थन करता है। मनीला में आज फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मेनालो के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने में उसे लागू करने का अधिकार है। विदेश मंत्री का यह बयान दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के समुद्री विवाद के मद्देनजर आया है। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत आसियान देशों की केंद्रीयता, सामंजस्य और एकता का समर्थक है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को नियमों पर आधारित शासन के ठोस अनुपालन के कारण इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रगति और समुद्र पर भरोसा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मामले में समुद्री संविधान के तौर पर मान्यता प्राप्त समुद्री कानूनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की 1982 की घोषणा का विशेष महत्व है और सभी पक्षों की संपूर्णता के साथ इसका पालन करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा है कि विश्व में आ रहे बदलावों को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत और फिलीपींस एक दूसरे के साथ अधिक नजदीक आकर सहयोग करें ताकि नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में बहुत स्पष्ट रूप से विकास हुआ है। विदेश मंत्री ने बताया है कि भारत और फिलीपींस न केवल महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र है बल्कि ये दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र के दो किनारे भी हैं। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर जहाजरानी के विकास के लिए भारत और फिलीपींस ने असाधारण प्रतिबद्धता व्यक्त की है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि अब जिस तरह दोनों देशों के संबंधों में प्रगति हो रही है तो रक्षा क्षेत्र पर विचार स्वाभाविक है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 3 अरब डॉलर के पार चला गया। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि आपसी व्यापार में बढ़ोतरी निरंतर जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है जिसके कारण मार्च से जून के बीच लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति पैदा हो सकती है। आयोग ने इस सिलसिले में गर्मी के असर से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से जारी क्या करें और क्या ना करें संबंधी सलाह की प्रतियां साझा की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के परामर्श के अनुसार लोगों को धूप में निकलने, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें आवश्यक मात्रा में पानी पीने के लिए भी कहा गया है। लोगों को बासी खाना खाने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया। चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है। ये ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए है। इस ऐप के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की फोटो, वीडियो आदि लेकर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें अतिरिक्त 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार के कई हिस्सों में आज रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। सुबह से ही युवाओं और किशोरों की टोलियां रंगों का त्यौहार मनाने में जुट रही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पुनर्वान के अनुसार जुलाई से सितंबर तक जब मॉनसून चरम पर होगा तब भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। जलवायु केंद्र में भारत के लिए मॉनसून का इस वर्ष का पहला पूर्वानुमान जारी किया गया। इसमें अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर के लिए दो अलग अलग आंकलन किए गए हैं। वहीं हाल ही में ईएनएसओ की ओर से जारी चेतावनी में एल नीनो से ला नीनो की स्थितियों में सुचारू रूप से बदलाव की बात कही गई है। माना गया है कि मॉनसून की स्थिति में बदलाव इसी पूर्वानुमान पर आधारित है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र ने जुलाई से सितंबर के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पूर्वी अफ्रीका से अरब सागर तक भारत में बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, कैरेबियन सागर, ध्रुवीय उत्तरी अटलांटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पर्वतीय प्रशांत क्षेत्र में औसतन सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि एल नीनो के कारण इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्मी के मौसम के बाद एल नीनो निष्क्रिय होने की संभावना है, वहीं ला नीनो के कारण भारत में मॉनसून के उत्तरार्ध में अच्छी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्र और गंगा के मैदानी इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज समुद्र पहरेदार आसिया देशों के विदेशी तैनाती के लिए फिलीपींस में मनीला की खाड़ी पहुंच चुका है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री प्रदूषण की रोकथाम करने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और आसिया क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये जहाज विशेष प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों और चेतक हेलीकॉप्टर से लैस है। पिछले वर्ष आईसीजी के विशेष जहाजों कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया था। पीपुल्स लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए के सर्वसम्मत उम्मीदवार डॉ चुम्बेन मुरी ने नागालैंड की एकमात्र सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। पीडीए गठबंधन ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड आरपीए अठावले गुट, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गुट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट और निर्दलीय पार्टी शामिल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस उम्मीदवार एस सोपेंग मेरेन जामिर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विकास का केंद्र बनेगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए विकास कार्य स्थिति को देखते हुए श्रीलंका को डीपीआई क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सबसे अच्छा देश है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डिजिटल इंडिया पहल के महत्व पर भी जोर दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने वेस्ट सियांग जिले के आलो में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अरुणाचल प्रदेश में दो संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी मायामी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने मोनेको के ह्यूगो नायस और पोलैंड के जेन जेलेंस्की की जोड़ी को 7-5, 7-6 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में कल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी का सामना हॉलैंड के सेम बर्विक और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शुभसाची भट्टाचार्य। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India supports the Philippines in upholding its national sovereignty. He said this while briefing the media along with his Philippine counterpart Enrique Manalo in Manila today. He said every country has the right to uphold and enforce its national sovereignty. The statement came amid Philippines' maritime dispute with China in the South China Sea. Dr. Jaishankar said India is convinced that the progress and prosperity of this region is best served by staunch adherence to a rules-based order. The External Affairs Minister said UN Clause 1982 is important in that regard as the constitution of the seas. He said all parties must adhere to its entirety both in letter and in spirit. Indian Coast Guard ship Samudra Pahredar, a specialized pollution control vessel, has reached Manila Bay, Philippines, as part of overseas deployment to ASEAN countries. The ship's visit is a component of a larger project that aims to showcase the Indian Coast Guard's capacity to respond to marine pollution, as well as the area's common concern and commitment regarding this issue throughout the ASEAN region. The Indian Coast Guard, ICG, has rescued 5 fishermen from a sinking Indian fishing boat at mid-sea approximately 50 kilometers from Porbandar. The ICG's action came in response to an SOS call. ICG ship C-16 quickly arrived in the vicinity of the fishing boat in a short time and launched the rescue and support mission. As the fishing boat was already 75% flooded, it sank 12 kilometers off Porbandar. The ICG ship rescued all 5 crew members and medical support was provided to them. Earlier on March 20, the ICG carried out a rescue operation of 8 crew members from a flooded boat after receiving a distress call off the coast of Kundapura in Karnataka. Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe has said India is at the center of growth in the coming years and it was in the interest of Sri Lanka to copy what India has done in the field of digital public infrastructure and piggyback on the success. He was speaking at the Conference of Digital Public Infrastructure organized by High Commission of India to Sri Lanka in Colombo today. Mr. Wickremesinghe said that during his visit to India last year, he discussed Sri Lanka's challenges and opportunities with Prime Minister Narendra Modi and decided to bring in elements of digital public infrastructure in the bilateral relations. In Assam, senior BJP leader and Union Minister Sarbananda Sonowal filed his nomination from the Dibrugarh seat today. Several senior leaders of the NDA accompanied him during the filing of papers. Lakhimpur MP Pradhan Barua also submitted his nomination seeking re-election from the seat. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma accompanied him. Congress MP and son of former Chief Minister Tarun Gogoi, Gaurav Gogoi, filed his nomination from the Jorhat Lok Sabha constituency today. Indian Territory of Jammu and Kashmir has a total of 5 parliamentary constituencies, out of which 2 were located in Jammu Division and 3 fall in Kashmir Division. The Jammu Division has Jammu Parliamentary Constituency and Udhampur Parliamentary Constituency, which covers a total of 8 districts of the Indian Territory out of its 20 districts. The Udhampur Parliamentary Constituency is the most developed constituency in India. The constituency covers 5 districts of the Jammu Division, including Kathua, Udhampur, Doda, Kishtwar and Ramban. The Election Commission has issued advisory to chief electoral officers of all the states and union territories in view of heat wave. It said India Meteorological Department has indicated the probability of above normal temperatures during forthcoming summer season, which may translate into stronger and longer spells of heat wave, especially during March to June this year. The Commission has shared a copy of do's and don'ts issued by National Disaster Management Authority regarding minimization of heat wave impact. In tennis, Indian-Australian pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden have entered the men's doubles quarterfinal of Miami Masters ATP 1000 tournament. They defeated Monegasque Polish pair of Hugo Nice and Jan Jelensky 7-5, 7-6 in the round of 16 at Miami Gardens, Florida, United States last night. Now the Indo-Aus duo will clash with Dutch-Australian pair of Sam Warbeek and John Patrick Smith in the quarterfinal tomorrow morning. That's all in this news bulletin. Namaskar.